ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैश्चिकी। श्रीमद्भागवतम सप्तम स्कंद अध्याय 12 13 है ना, अध्याय 13 श्लोक संख्या 7। मैं सोचा कि चिन्ह लगाए हैं यहाँ पर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। असत शास्त्रेषु सज्जते न उपजीवित जीविकां बात बादान तेजत तर्कान पक्षम कंच न संश्रियत। नायसत शास्त्रेषु सज्जेत नोपजीवेत जीविकां बाद बादं यते तर्कान पक्षं कंचन संश्रेत। लिखा है ना, निकालो बच्चा। वो ब्रह्मचारी कहाँ भाग गया, हो निकल गया। न असत शास्त्रेषु सज्जेत नोपजीवेत जीविकां बाद पदां यतेष्कर्म पक्षं कंच न संश्रयेत्। न असत शास्त्रेषु सज्जेत नोपजीवेत जीविकां बाद पदां यतेष्कर्म पक्षं कंच न संश्रयेत्। हरे कृष्ण। Thank you. मट्टा जी लोग मट्टा जी नहीं असत शास्त्रेषु समाचार पत्र उपन्यास नाटक कल्पित कथा जैसा साहित्य सजेता पढ़े या आसक्त हो न तो उपजीविता रहने का प्रयास करें जीवित काम किसी व्यवसायिक साहित्यिक वृत्ति परक बादान दर्शन के विविध पक्षों पर वृथा के तर्क वितर्क तरेता छोड़ दें तर्कान तर्कों विपत करों को पक्षम पक्ष दल कंचा कोई न नहीं संश्रेता शरण ग्रहण करें। अनुवाद तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा समय का व्यर्थ उपव्यय कराने वाले अर्थात आध्यात्मिक लाभ से विहीन साहित्य का तिरस्कार करना चाहिए। न तो कोई अपनी जीविका कमाने के लिए वृत्तिपरक शिक्षक बने न वाद विवाद में भाग लें, नहीं वह किसी कारण या पक्ष का आश्रय लें। तात्पर्य रूपा जी लिखते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने के इच्छुक व्यक्ति को अत्यंत सावधान रहना चाहिए कि वह साधारण साहित्य पढ़ने से बचे। यह संसार ऐसे सामान्य साहित्य से भरा पड़ा है जो आवश्यक ही मन को विचलित करने वाला होता है। ऐसे साहित्य जिसमें सामान्य समाचार पत्र नाटक उपन्यास तथा पत्रिकाएं सम्मिलित हैं, वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति के लिए नहीं है। इसे तो कौवे का क्रीड़ा स्थल तदव्यास तीर्थम कहा गया है। आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने वाले को ऐसे साहित्य का तिरस्कार करना चाहिए, नहीं मनुष्य को विभिन्न तार्किकों या दार्शनिकों के निष्कर्षों से संबंध रखना चाहिए। निसंदेह प्रचारकों को कभी कभी विपक्षियों के कथन पर तर्क वितर्क करने की आवश्यकता पड़ती है, किंतु जहाँ तक संभव हो ऐसा वाद विवाद की मनोवृत्ति से बचना चाहिए। इस प्रसंग में श्रील माधवाचार्य कहते हैं, न तो वृथा साहित्य का आश्रय ग्रहण करें, न उन तथा कथित अनेक दार्शनिकों तथा विचारकों से संबंध रखें जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए व्यर्थ है। नहीं फैशन या लोकप्रियता के लिए किसी को शिष्य बनाए। मनुष्य इन तथा कथित शास्त्रों के प्रति निरपेक्ष बना रहे, न तो पक्ष ले न विरोध करे, नहीं शास्त्रों की व्याख्या के लिए धन लेकर अपनी जीविका को चलाएं। सन्यासी को सदा उदासीन रहना चाहिए और भगवान के चरण कमलों की पूर्ण शरण ग्रहण करने का आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए साधनों की खोज करनी चाहिए। श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं देहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण सिंधु दीनबंधु कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 धन्यवाद। ऐसे जोर से जप करना चाहिए तब मन लगेगा। यहाँ पर बड़े हमारे आचार्य लोग सावधान करते हैं, हमारे जो पूर्वाचार्य हैं बड़े सावधानी पूर्वक जो संत महात्मा आने वाले हैं आए हैं इनके लिए सावधानी बरतना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। साधु सावधान बोलते हैं ना हमारे ब्रजमंडल में, जब भोजन होता है तो प्रसाद होता है तो बोलते हैं साधु सावधान, तो संत लोग वो खाना बंद कर देते हैं, तो पता नहीं क्या होने वाला है अब ये, तो जोर से बोलेंगे जय जय श्री। बीच बीच में खाते समय कभी मन भटकता है तो बोल देने से ठीक हो जाता है, मन लौट करके आ जाता है फिर। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि समय का व्यर्थ अव्यय करने वाले अर्थात आध्यात्मिक लाभ से विहीन साहित्य का तिरस्कार कर देना चाहिए। जिस शास्त्र में भगवत चर्चा नहीं है, भगवान की कथा नहीं है, शास्त्र सम्मत नहीं है, संत महात्मा उसे देखते नहीं है, ऐसे शास्त्र का तिरस्कार कर देना चाहिए। ऐसे ग्रंथ को या ऐसे प्रभुपाद जी नाम रखे हैं ऐसे किताबों को नहीं पढ़ना चाहिए जिसमें भक्ति ना हो। किस व्यक्ति के लिए सावधान किया जा रहा है? जो व्यक्ति आध्यात्मिक में उन्नति करना चाहता है, जो व्यक्ति भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहता है, उसके जीवन में बस एक ही शास्त्र होना चाहिए, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। देवकी पुत्र यानी कृष्ण ने जिस ग्रंथ में गीत गाया है, भगवत गीता उपनिषद में प्रभु ने एक गीत गाया है, उस गीत का नाम गीता पड़ा हुआ है। जीवन में ऐसे शास्त्र का संचय करें, ऐसे शास्त्र को पढ़ें जिससे हमारी भक्ति बढ़े, जिससे प्रेम बढ़े प्रभु के प्रति, जिससे ये समझ में आ जाए कि ये मनुष्य शरीर कितना मूल्यवान है। बड़ा मूल्यवान शरीर है ये। आगे कहते हैं, तिरस्कार करना चाहिए तो कोई अपनी जीविका कमाने के लिए वृत्ति परक शिक्षक बने, न वाद विवाद में भाग लें, नहीं वह किसी कारण या पक्ष का आश्रय लें। जिनको संत बनना है, जिनको भक्त बनना है, जिनको भगवत प्रेम भगवत धाम में जाना है, वह उस व्यक्ति को संसार के वाद विवादों में नहीं पड़ना चाहिए। कुछ बात भगवान पर भी छोड़ देना चाहिए। हर बात को हम संभाल नहीं सकते, हर बात को संभाल भी नहीं सकते। शांत हो जाना चाहिए, मौन हो जाना चाहिए, वहां पर बात विवाद ना करें। कथा या प्रवचन इसलिए ना करें कि उससे धन की प्राप्ति हो। कथा करके धन कमाना ये अपराध है, या कथा के बदले पैसे मांगना ये बहुत बड़ा ऑफेंस है, ये बहुत बड़ा अपराध है। आजकल तो दुनिया में कथा इसीलिए होती है कि धन आए, पैसा आए। कथा इसलिए होना चाहिए, कथा इसलिए श्रवण कीर्तन करना चाहिए जिससे हमारे जीवन में वैराग आना चाहिए, विरक्ति आनी चाहिए, भगवत प्रेम आना चाहिए, भगवान से संबंध जोड़ना चाहिए। ऐसे कथा इसलिए होनी चाहिए। कथा कथा इसलिए ना हो कि हमारे पास धन आए, यश बढ़े, ख्याति बढ़े, लोग मेरी पूजा करें। कथा इसलिए जीविका नहीं करनी चाहिए। ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है, ये कथा तो ज्ञान वैराग्य और भक्ति से भरा पड़ा हुआ है। ज्ञान विज्ञान सहितम यदि गत्वा मोक्ष से सुभात, भगवान गीता में कहते हैं। इस ज्ञान को, जो ज्ञान प्राप्त हुआ, इसको विज्ञान में बदलिए। बड़े बड़े संत लोग, बड़े बड़े राजा भी, बड़े बड़े सदगृहस्थ भी संसार में वीत राग से मुक्त हो करके और भगवत प्रेम प्राप्त किया उन लोगों ने। वीत माने धन, राग माने आसक्ति। संसार के आसक्ति मोह को त्याग करके, संसार के धन ऐश्वर्य वैभव को त्याग करके लोगों ने भगवान के पास पहुँचे। परीक्षित महाराज को जब ये संदेश मिला, पता लगा कि मेरी सातवें दिन मृत्यु निश्चित कर दी गई है ऋषि पुत्र के द्वारा, तो परीक्षित जी ने राजपाट से बिल्कुल उदासीन हो गए, विमुख हो गए बिल्कुल। और मन में इच्छा थी कि अब 7 दिन ही बचा है, तो 7 दिन हमें क्या करना चाहिए? 7 दिन अब भगवत प्राप्ति करने का उपाय करना चाहिए। परीक्षित जी के जीवन में तो 7 दिन की गारंटी थी। ऋषि पुत्र ने कहा कि 7वें दिन होगी, इसका मतलब ये हुआ कि 7 दिन के भीतर मृत्यु नहीं होना है। 7 दिन तो पक्का था बिल्कुल, और हम सबके जीवन में तो 7 मिनट की भी गारंटी नहीं है, 7 सेकंड की भी गारंटी नहीं है। फिर भी हम कोई सावधानी पूर्वक सावधान नहीं है। बहुत लोग सो रहे हैं। हरे कृष्णा, सीधा बैठ के सुनो, बहुत देर थोड़ी सुनना, आधे घंटे खत्म हो गया। 7 सेकंड के भी गारंटी नहीं है। एक बार नाक से हवा निकली और दोबारा नहीं गई तो गोविंद आए, साफ है जीव यहां से। 1 मिनट की गारंटी नहीं है। फिर भी असावधान है हम, अचेत हैं बिल्कुल, सावधानी बरतना है। परीक्षित जी ने, देश के राजा हैं, पांडवों के मान वर्धन करने वाले हैं, धनुर्धर हैं, वीर हैं। गर्भस्थ शिशु के रूप में जब थे तो प्रभु ने जाकर के गर्भ में जाकर के रक्षा किया। वह परीक्षित जब यह पता चला कि सत्यवें दिन हमारी मृत्यु होगी, तो एक बलकल झिन्नी सी कपड़ा पहन करके कमर में और सीधे निकल गए गंगा जी के तट पर बैठ गए। अब मुझे भगवत प्राप्ति करना है, अब भगवान के साथ मजबूती से अपने जीवन को जोड़ना है, ये है तैयारी। आप देखो, यदि आपको यहाँ से बॉम्बे जाना हो, दिल्ली जाना हो, कहीं विदेश जाना हो, तो कितनी तैयारी करते हैं हम सब, कितनी तैयारियाँ होती हैं। एक दो महीना पहले से छोटे छोटे चीज को एक स्थान पर रखने लगते हैं, जबकि एकाध महीने के लिए जाना है, जबकि एक हफ्ते के लिए जाना है, तो इतनी तैयारी होती है। थोड़ा सोचो, चिंतन करो, जब हमेशा के लिए जाना है तो क्या हमने तैयारी किया। पूरी तैयारी होनी चाहिए जाने के लिए। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, तात्पर्य में ध्यान से सुनना आप लोग। आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने के इच्छुक व्यक्ति को अत्यंत सावधान रहना चाहिए, बहुत सावधानी की जरूरत है। सावधानी हटी घट जाती है, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र में हो या भौतिक क्षेत्र में हो। थोड़ा भी जीव लापरवाह हो और असावधान हो जाए, मन न जाने कहाँ कहाँ निकल करके घुमाता है। हाथ में जपमाला भी है, जेवा बोल भी रही है, लेकिन मन की अवस्था ऐसी है कि पूरा संसार घुमा के लाता है। जब भी पूरा हो जाता है, पता नहीं चलता कब पूरा हो गया। ये बताओ, मन लगा करके जप करना है, अत्यंत सावधानी की आवश्यकता है। थोड़ी भी आंख झपकी, थोड़ी सी आंख खुली, वो जो साधना में है, जो भक्ति में, वो फिसल जाता है। वो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि अत्यंत आध्यात्मिक प्रगति करने के इच्छुक व्यक्ति को अत्यंत सावधान रहना चाहिए कि वह साधारण साहित्य पढ़ने से बचे। अन्य प्रकार का जो साहित्य है, बहुत प्रकार के साहित्य लिखा गया है, अनेक शास्त्रम बहुलाश्च विद्याम, अनेक बातें लिखी गई है। कानों के मनोरंजन, मन के मनोरंजन करने के लिए शास्त्र लिखा गया है, कान को सुनने में अच्छा भी लगता है, ऐसे भी बातें लिखी गई है। इसमें हम लोगों को नहीं फंसना है। प्रभुपाद जी सावधान करते हैं, बचें ऐसे साहित्य पढ़ने से। यह संसार ऐसे सामान्य साहित्य से भरा पड़ा है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि संसार में ऐसे साहित्यों से भरा पड़ा है संसार, जो आवश्यक ही मन को विचलित करने वाला होता है। ऐसे शास्त्र पढ़ने से मन तो ऐसा ही विचलित है, और भी पढ़ने के बाद विचलित हो जाता है। अच्छे अच्छे भक्त भी यदि उस शास्त्र को पढ़ते हैं, मैं कई एक संतों को देखा हूँ, बड़े गंभीर संत थे, बहुत गंभीरता से जप भजन करते थे, लेकिन थोड़ी सी असावधानी हुई, मन विचलित हुआ और संसार में गिर पड़ा जीव। अत्यंत सावधानी की जरूरत है। कभी कभी आप मोबाइल खोलते हो, अब एक बार खुल गया तो हो गया काम, फिर एक से एक बढ़ करके, एक से एक बढ़ करके छी, अब सोचता है कि अब बंद कर देंगे। वो मन घुमाते घुमाते घंटे खराब कर देता है। ऐसे चीज कहते हैं कि नहीं, मैं इसमें ये देख रहा था कि किसका किसका मैसेज आया है, उसको डिलीट करना था। ऊपर से झूठ भी बोलता आदमी। कभी कभी अच्छा चीज भी है इसमें, लेकिन अच्छा कम है, बुराइयां ज्यादा है इसमें। इसलिए इन सब चीजों से हमें बचना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे सामान्य साहित्य से भरा पड़ा है, जो आवश्यक ही मन को विचलित करने वाला है होता है। ऐसे साहित्य जिसमें समाचार पत्र जैसे नाटक, उपन्यास तथा पत्रिकाएं सम्मिलित हैं, वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति करने के लिए नहीं है। इसे तो कौओं का क्रीड़ा स्थल बताया गया है। कौवे कहाँ जाते हैं? जहाँ कचरा होता है वहाँ बड़ा उनका मनोरंजन होता है। उस कचरे को, उस गंदगी को बड़े खुश होकर के, प्रसन्न होकर के, उछल उछल करके खाते हैं। लेकिन वहाँ हंस लोग नहीं जाते, वहाँ अच्छे व्यक्ति नहीं जाता। वहाँ जो पक्षियों में जो परमहंस हंस है, वो तो किसी विवेकी पक्षी है, वो तो कहीं अच्छे स्थान पर जा करके बैठता है। वो वहाँ नहीं बैठना चाहिए। कहते हैं कहा गया है आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने वाले की ऐसी साहित्य का तिरस्कार करनी चाहिए। नहीं, मनुष्य को विभिन्न तार्किकों में दार्शनिकों के निष्कर्षों से संबंध रखना चाहिए, ऐसे लोगों से संबंध भी नहीं रखना चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने संत के भेष में रहने वाले ऐसे लोगों से सावधान किया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यदि आपको मायावादी कोई सन्यासी दिख जाए जो लोगों को भ्रमित करता है, जो सकाम कर्मी है, जो भागवत को व्यवसाय बना लिया है, ऐसे लोगों को दर्शन करने से आपको सचौल स्नान करना चाहिए। सचौल स्नान का मतलब कपड़े सहित कूद जाओ जल के अंदर, गंगा जी में अपवित्र हो जाता है जीव ऐसे लोगों के दर्शन से, ऐसे लोगों के संग से। जिनको भगवत प्राप्त, बहुत कम लोग हैं जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। हजारों मनुष्यों में से कोई एक व्यक्ति चाहता है कि भगवान के तरफ अब मैं चलूं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यद्यपि सिद्धये, उसमें से एक, कोई हजारों में से कोई एक व्यक्ति भगवान को तत्व से समझना चाहता है, बाकी सब इसी संसार में रहना चाहते हैं। एक बार देश का राष्ट्रपति जेल में गया, उसके मन में आया कि भाई जेल में बहुत कैदी हैं, हमारी ही प्रजा है, चलो इसको देख करके आता हूँ, समाचार लेकर के आता हूँ। वो राष्ट्रपति जेल में चला गया, अनेक प्रकार के जेल में कैदी थे, अनेक प्रकार के अपराध भी किए थे। राष्ट्रपति के आगमन से जितने जेल में कैदी थे सबका मन बड़ा प्रसन्न हुआ, देश का राजा आया है, मालिक है, पिता है, ये हमारी समस्या जरूर सुनेगा। ये राष्ट्रपति भी धार्मिक था। राष्ट्रपति ने पहला कैदी से पूछा कि भाई तुम संसार छोड़ के मेरे जेल में आए हो, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, इसमें कोई कठिनाई तो नहीं है? बोले कि नहीं सरकार, वैसे तो कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन जिस जेल में मैं बंद हूँ उस जेल में काली कोठरी है, थोड़ा इसको वाइट वॉश हो जाए, रंग रोगन हो जाए तो रहने के लिए सुविधा हो जाए। दूसरे कैदी के पास गया, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? बोले कि नहीं सरकार, वैसे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन दो टाइम भोजन देते हैं, यदि आपके आज्ञा हो जाए तो तीन टाइम भोजन मिले। राष्ट्रपति था, शासन था, उसने कहा कि भाई इसको तीन टाइम भोजन दो। तीसरे चौथे नंबर के कैदी के पास गया, पूछा तुम्हें कोई दिक्कत है? बोले कि नहीं साहब, बड़ा ठंड का दिन है, बहुत ठंड पड़ रहा है, यदि कोई कंबल ब्लैंकेट मिल जाए, कोई स्वेटर मिल जाए तो काम चल जाए। ऐसे ऐसे करते करते जब 100 नंबर के कैदी के पास पहुंचा, बोला कि तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है इस हमारे जेल में? बोला कि सरकार दिक्कत बस एक ही है, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत यही है कि हफ्ते में ये एक पिक्चर दिखाते हैं, दो दिखाएं तो हमारा काम चल जाए। राष्ट्रपति है, ऐसे ऐसे 101 नंबर कैदी के पास जाके पूछा कि मेरे जेल में आए हो, तुम्हें कोई दिक्कत तो कोई कष्ट तो नहीं है? बोले कि सरकार वैसे तो कोई कष्ट नहीं है, मैं जब पढ़ता था अपने स्कूल में तो राष्ट्रपति के अधिकार को समझता था मैं। कौन कैदी बोला? 101 नंबर का कैदी कहा कि मैं राष्ट्रपति के अधिकार को समझता था, जानता था, मैं पढ़ा हूं मैं। सरकार आप मेरे समाचार पूछने आए हो, यदि आप इस जेल से मुझे मुक्त कर दो तो बड़ी कृपा होगी। एक आदमी कहा, उसी प्रकार से हजारों में से कोई एक मनुष्य ऐसा इच्छुक है जो भगवान के धाम में जाना चाहता है, नहीं तो किसी को घर बनाना है, किसी को कपड़ा सिलाना है, किसी को पिक्चर देखना है, बस इसी संसार में हम सब लगे हैं। एक नंबर का जो 101 नंबर का कैदी है, उसने जिज्ञासा किया कि मैं आपके अधिकार को मैं जानता हूं, यदि आप इस जेल से मुझे मुक्त कर दें तो आपकी बड़ी कृपा बड़ी दया रही होगी। कहाँ चाहते हैं हम लोग जाना? जाना चाहते तो सावधानी से जप करते हम, प्रभु के पास जाना चाहते तो अनावश्यक वस्तुओं में, अनावश्यक चीजों में, अनर्गल बातों में अपने समय को व्यतीत नहीं करते हम सब। इसलिए प्रभुपाद जी पहले शब्द में कहते हैं कि सावधान हो जाना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए हम सबको। अब इसमें माधवाचार्य जी ने भी सतर्क किया है, सावधान किया है। अब कहते हैं, न तो वृथा साहित्य का आश्रय ग्रहण करें, जो बेकार ग्रंथ हैं, हो सकता है वो साहित्य में अच्छी बात लिखी हो सकता है कानों को सुनने के लिए अच्छा लगता हो सकता है वो कथा सुनने से मन प्रसन्न भी हो सकता है, लेकिन यदि उस कथा से, उस दर्शन से, उस प्रसंग से यदि भगवान के पाद पद्मों में हमारी रति नहीं हुई, रुचि नहीं हुई, तो श्रीमद् भागवत में सुत जी कहते हैं, श्रम ए वही केवलम, हमने केवल श्रम किया, केवल परिश्रम किया हमने। वृथा साहित्य का आश्रय ग्रहण ना करें, न उन तथाकथित अनेक दार्शनिकों तथा विचारकों से संबंध रखें, संबंध भी नहीं रखना है, संबंध भी नहीं जोड़ना है। बड़े बड़े संतों ने, यदि उनके जीवन में राम कृष्ण नहीं है तो लोगों ने अपने पिता और भाई को भी छोड़ दिया। प्रहलाद जी ने अपने पिता का परित्याग कर दिया था, पिता परित्याग करने के योग्य नहीं है, लेकिन पिता विष्णु विरोधी है, भक्तों का विरोधी है, भक्तों को आदर मान नहीं करता है, ऐसे पिता को प्रहलाद जी ने त्याग कर दिया, छोड़ दिया। विभीषण जी ने अपने भाई का परित्याग कर दिया, रावण का त्याग कर दिया था। कैसे? जो राम से विरोध करता हो, जो राम को नहीं मानता हो, जो राम को नहीं भजता हो, ऐसे व्यक्ति से क्या सरोकार रखना चाहिए? नहीं रखना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि दार्शनिकों तथा विचारकों से संबंध ना रखें, नहीं रखना चाहिए। भरत जी ने अपने माता का परित्याग कर दिया था, बड़े बड़े संतों ने शिक्षा दिया है। आगे कहते हैं, जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए व्यर्थ हैं, नहीं फैसला या लोकप्रियता के लिए किसी को शिष्य बनाए। आप बाहर की कथाओं में जाइए, जब पंडाल में कथा होता है तो उस समय हजारों के संख्या में 7 दिन के कथा में प्रभावित हो करके, कथा सुन करके लोग शिष्यवत ग्रहण करने आ जाते हैं कि आप शिष्य बनाओ, और हजारों लाखों के संख्या में एक साथ बैठा करके लोग दीक्षा दे देते हैं। उससे केवल लोक प्रियता तो बढ़ सकता है, लोक में आदर मान तो मिल सकता है तुम्हें, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं मिलेगा, जीवन में सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। शिष्य बनाना चाहिए कि अपने शिष्य को भगवत धाम में उसको भेज दे, जैसे कि जितने अथराइज प्रमाणित संस्था है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि इस्कॉन है, इस्कॉन में यदि किसी व्यक्ति को अपने शरीर को दीक्षित कराना हो तो इतने साधारण रूप से उसको दीक्षा नहीं मिल सकता है। आज तो बहुत ही टाइट हो गया है, आज तो उसको बार बार एग्जाम देना पड़ता है, क्लासेस अटेंड करने पड़ते हैं, इसके बाद 2-3 साल तक इंतजार करना पड़ता है, 2-3 साल आश्रम में रह करके आश्रम के जब सेवा करता है, सेवा से अथॉरिटी लोग जब उससे प्रसन्न हो जाते हैं तब उसे अनुमति देते हैं कि अब तुम दीक्षा ले सकते हो। इतना महंगा दीक्षा है। ऐसे तो हाट के गुरु बाट के चेला, रास्ते में चलते चलते एक चेला मिल गया, गुरुजी ने दीक्षा दे दिया, दिन भर साथ में रहे, शाम को दोनों अकेले अकेले हो गए। ऐसे तो शिष्य गुरु बहुत हैं, लेकिन हमारे संस्था में यानी इस्कॉन में इतने प्रमाणित, इतने कि बार बार गुरुजन लोग, वर्तमान आचार्य लोग अपने शिष्यों को पूछताछ करते रहते हैं, तुम्हारी भक्ति ठीक चल रही है ना, मंगला आरती में जाते हो ना, 16 माला का जप करते हो कि नहीं। ऐसे स्थानों में दीक्षा शिक्षा लेनी चाहिए, व्यर्थ कहीं जीवन न बिताएं, अपने जीवन को खराब न करें, और शिष्य भी इसलिए न बनाएं कि उनकी संसार में ख्याति बढ़े, यश बढ़े, पद प्रतिष्ठा मिले, इसलिए भी शिष्य नहीं बनाते हैं हमारे यहाँ। मनुष्य इन तथा कथित शास्त्रों के प्रति निरपेक्ष बना रहे, न तो पक्ष ले और न विरोध करे, नहीं शास्त्रों की व्याख्या के लिए धन लेकर अपनी जीविका का चलाए। सन्यासी को सदा उदासीन रहना चाहिए। जो सन्यासी हैं, जो भगवत प्राप्ति भगवान के धाम में जाना चाहते हैं, उनको तो बिल्कुल सावधान रहना चाहिए और संसार के हर वस्तु से उदासीन रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि यदि आप उस शास्त्र को या किसी व्यक्ति से दूर रहते हैं तो उसकी निंदा करें, किसी के निंदा नहीं करना है, तटस्थ रहना है, न उसके साथ रहना है न साथ जाना है, अपने भाव में मग्न रहना है, अंतर्मुखी हो जाना है, अंदर से ही परमात्मा को, परमात्मा तो सभी जगह हैं, सर्वत्र हैं, सबके हृदय में हैं, आप ब्रह्म भुवनालोका, इस लोक से लेकर के ब्रह्म लोक तक कोई ऐसा जीव नहीं है जिसमें परमात्मा ना बैठे हो, कोई ऐसा पशु पक्षी ना हो जिसमें प्रभु का आवास विश्राम ना हो। प्रभु तो हैं लेकिन हमारी दृष्टि ठीक नहीं है, हमारी देखने की कला सही नहीं है, इसीलिए प्रभु को नहीं देख पाते हैं, इसीलिए प्रभुपाद जी ने बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किया। मंदिर में जाओ, मंदिर में परमात्मा भी मिलेंगे और परमात्मा के प्रिय जन जो संत वैष्णव हैं वो भी नृत्य करते हुए तुमको मिलेंगे साथ में। कितना अच्छा लगता है ना गुरु पूजा में जब आप घूमते हो, उनको ये भी याद नहीं होता है कि मेरे शरीर में दर्द हो गया, कि बूढ़ा है कि जवान है, सभी नाच रहे हैं। नाचता कब है व्यक्ति? जब उसको आनंद आता है, सुख मिलता है, नाचता है, हंसता है, बोलता है, उस समय उन भक्तों की चेहरा देखो, खिला हुआ होता है चेहरा, प्रसन्नचित होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के साथ चल रहे हैं, गुरु के साथ चल रहे हैं, भगवान के साथ बैठे हैं, आध्यात्मिक से संबंध को जोड़े हैं। और वही कीर्तन जब खत्म होता है, क्लास खत्म हो जाए, जैसे गेट के बाहर निकलते हैं फिर वही चेहरा खराब, तो इसका मतलब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, फिर यहीं रहो। यहीं रहने का मतलब गेट से बाहर जाओ लेकिन इसी भाव में रहो, इसी ब्रह्मभूत में रहो। रास्ते में चलते समय ऐसा लगे कि हमारे साथ सैकड़ों भक्त चल रहे हैं, मैं भक्तों के बीच में हूं, मैं प्रभु के साथ में हूं, यही भाव लेकर के चलो, आनंद आएगा, सुख मिलेगा। तो जीवन में एक शास्त्र होनी चाहिए, एक पूजा होनी चाहिए और एक ही मंत्र होना चाहिए, वो है महामंत्र हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अनेक शास्त्र पढ़ने से, अनेक प्रकार के व्यक्तियों के संग करने से हमारी बुद्धि विचलित हो सकती है, मन भ्रमित हो सकता है, मन की अवस्था बिगड़ सकता है। एक बार ना तीन व्यक्ति नौका पर चढ़े, बोट में चढ़े तीन व्यक्ति, एक मुसलमान था, एक ईसाई थे और एक हिंदू था। तीनों चढ़े नौका पर, कुछ दूर बोट जब आगे गई तो तूफान आया। प्रभुपाद जी बताते हैं इस कथा को, तूफान आया, बोट हिलने लगी, नौका में पानी भी भरने लगा। अब नाविक ने सोचा कि शायद मैं इस बोट को संभाल नहीं पाऊंगा, अब संभल नहीं पाएगा। उसने सचेत किया, सावधान किया तीनों व्यक्तियों को, सावधान, अब ये बोट जल के अंदर जाने वाली है, अब अंतिम घड़ी है, अंतिम समय है जीवन का, अपने अपने इष्ट देव को याद करो। ईसा जो ईसा मसीह के जो ईसाई था अपने ईसा मसीह को याद किया, जो मुसलमान था वो भी अपने आला खुदा जो भी था उनको याद किया, और जो हिंदू था उसने भी याद किया। इतना नाम लिया, इतना नाम लिया, हे शंकर जी मेरी रक्षा करो, हे ब्रह्मा जी, हे इंद्र, हे वरुण, हे शंकर, हे सभी देवताओं को नाम लिया, काली जी, दुर्गा जी, हनुमान जी, सबका, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मैं डूबने वाला हूँ, जाने वाला हूँ। अंत में कहा, हे राम जी मेरी रक्षा करो। राम जी तो दौड़ के आ ही रहे थे, तब तक डूबते डूबते कहा कि हे जानकी जी मेरी रक्षा करो, और डूब गया। डूब गया तो तीनों पहुंचे भगवान के पास, धर्मराज के पास पहुंचे। हिंदू भाई ने कहा कि भाई हम तीनों आदमी बोट पर सवार थे, तीनों आदमियों को ही पार करना था, हम तीनों डूब गए। इन लोगों ने तो एक एक बार नाम लिया और ये भगवत धाम में चले गए, प्रेम मिला इनको, मैं तो क्यों नहीं गया। उन्होंने कहा कि देखो भाई, तुम जितना नाम लेते थे ना उतने उसी उसी रूप में भगवान तुम्हारे पास आ रहे थे। अरे भगवान किस में नहीं है, सब में भगवान है। जैसे दूध के हर बूंद में घी छुपा हुआ है, उसी प्रकार इस जगत में हर वस्तु में जगदीश बैठे हुए हैं। कोई ऐसा वस्तु नहीं है जहां परमात्मा नहीं है। तुमने बहुत नाम लिया, जैसा जैसा जो जो नाम लिया वो बन के आ रहे थे। तुमने कहा अंतिम में, हे राम जी मेरी रक्षा करो। प्रभु ने कहा मैं तो आ ही रहा था, तब तक तुम्हारी बुद्धि बदल गई, विचलित हो गया। तुम कहा हे सीता मेरी रक्षा करो, अब सीता बनने में देर तो लगेगा ना, साड़ी पहनने में देर हो गया तो डूब गया उसमें। बताओ हमारी ऐसी अवस्था है। एक शास्त्र को अध्ययन करना चाहिए, एक का चिंतन करना चाहिए, एक का ही मनन करना चाहिए। यदि हमारी मन की अवस्था बदलती रहेगी, उनसे भी मिल लो, उनसे भी बातचीत कर लो, जो भगवत प्रेमी नहीं है, जो थोड़ा बहुत भक्तों का निंदा करता है उसके साथ भी बैठ लो, ये बिल्कुल अनुचित नहीं है। इसीलिए महाप्रभु ने कहा असत संग छाड़ी यही वैष्णव आचार्य, आपको संग करना है तो केवल संतों का संग कीजिए। इसीलिए महाप्रभु ने कहा साधु संग सर्व शास्त्र कोय लंग सर्व सिद्धि होय। रिद्धियां सिद्धियां आपके इर्द गिर्द में घूमने लगते हैं, संत महात्माओं के साथ आप बैठ करके देखिए। यदि कोई संत कभी कभी नहीं भी बोलता है, हमने देखा है, एक एक माता जी थी चंडीगढ़ का, वो प्रभुपाद जी से मिलने आती थी। वो बाद में बताती थी बात को कि जैसे मैं प्रभुपाद जी के पास जाती थी मिलने के लिए, उनके कमरे में जाती थी, न मैं बोल पाती थी न उनको देख पाती थी, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे, आवाज नहीं निकलती थी। प्रभुपाद जी बार बार मेरे से पूछते थे, मैं कुछ नहीं बोल पाता था। कोई जरूरी नहीं है कि संत के दर्शन करने हम जाएं और संत कुछ बोलें, बोले तो अति कृपा है, अति दया है उनकी। यदि ना भी बोलें, उनका आप दर्शन करते रहो, आप उनके साथ बैठे रहो, आपको बैठने से, दर्शन करने से, उनके वाइब्रेशन मात्र से आपके जीवन के पाप नष्ट हो जाता है सब। इतने संतों की कृपा है ये सब। संत महात्मा निरंतर प्रभु के याद में रहते हैं, उनके तपस्या में रहते हैं, प्रभु उनके अंदर बल प्रदान करते हैं। आप देखते हैं ना संसार में, जब सूर्योदय होने से पहले अंधेरा दूर होने लगता है, सूर्य आकाश में नहीं है, अभी आने वाले हैं, अंधकार दूर हो जाता है। उसी प्रकार से संत महात्मा के दूर से देखने से कभी कभी आप किसी चौक पर, किसी मोड़ पर दो चार व्यक्ति बात करते हों और कोई संत आ रहा हो सामने से, तो क्या कहते हैं, भाई अब ये बात बंद करो, अब बंद करो, देखो कोई संत आ रहा है। उस संत का दूर से प्रभाव पड़ा कि आपकी बातचीत को बंद करा दिया। धीरे धीरे उसके मन पवित्र होने लगा और आते आते उसके चरणों में गिर जाता है व्यक्ति। ये संत की महिमा है। इसीलिए साधु संग, महाप्रभु ने कहा संतों का संग करना चाहिए, साधु का संग करना चाहिए। इसलिए संतों के संग करो, भगवान से प्रेम करो, सबन जोड़ो, साधुओं के संग करते करते अपने जप को, निष्ठा को बढ़ाओ, जप करो ठीक से, एक आसन से। कभी कभी भगवान के साथ एकांत में बैठो। कितने लोग भगवान के साथ बैठते हो एकांत में? एक ही द्वार में बैठते हैं, जब जप करते हैं तो भगवान के साथ बैठिए। मोबाइल भी रख दीजिए दूर और बढ़िया से जप कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम राम। जो आपने आवाज निकाली उसी को सुनना है ध्यान से, चैंटिंग एंड हियरिंग, बोलना और सुनना, फिर आप देखिए उस जप का आनंद कैसा आता है, कैसा सुख मिलता है आपको। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। वन टाइम मोर, हरे कृष्णा, हाथ ऊंचा करके सभी लोग, हरे राम राम राम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Prabhupada Ji Maharaj ki, Srimad Bhagavatam Mahapuran ki, Gaur Bhakta Vrind ki, Shri Radhe. Jai Shri Krishna.